नमस्कार शिक्षार्थियों और श्रोताओं, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। शिक्षार्थियों और श्रोताओं, आज जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के लर्नर्स के लिए हम जो कार्यक्रम लेकर आए हैं, उसका सब्जेक्ट रहेगा लाइब्रेरियल इंफॉर्मेशन साइंस। और जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे वो है ओवरव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज। जी हाँ, आपका ये लेसन नंबर 5 है और आज इस लेसन का दूसरा पार्ट आपको सुनाने जा रहे हैं। इसका पहला पार्ट हम आपको सुना चुके हैं और इस लेसन पर अधिक जानकारी दे रही हैं मिस मंजू चुरुंगो जी। तो आइए शिक्षार्थियों, मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम ओवरव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज पार्ट 2।
नमस्कार लर्नर्स, लेसन 5 ओवरव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज के इंफॉर्मेशन जो है उसके स्रोतों के बारे में हम बात करेंगे। जो हमने थोड़ा सा बात की है उसमें हमने आपसे ये बताया कि इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर होती है। जैसे हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, इसी तरह से इन्फॉर्मेशन जो है शेयर होती है। इन्फॉर्मेशन हमारे किस काम आती है? हमारी रोज़मर्रा के जो काम है, हर दिन जो हम काम करते हैं, उनमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उन सब में हमें इन्फॉर्मेशन काम आती है। या अगर हम रिसर्च करना चाहते हैं, करते हैं, छोटी सी भी रिसर्च होती है, उस सब में ये इन्फॉर्मेशन हमें काम आती है। और कभी कभी हमने उस सब में आपको डेफिनेशन भी बताया है इस इन्फॉर्मेशन का क्या होता है, और इन्फॉर्मेशन सोर्सेज के बारे में भी बताया, और इन्फॉर्मेशन की क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में भी हमने आपसे बात की। और जो हमने अच्छी तरह से समझाया आपको वो ये था, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज और टर्शरी सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन कौन से होते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज कौन से होते हैं, और इसकी हिस्ट्री, जो इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज कहाँ से डेवलप हो गए, कैसे शुरुआत हुई, कैसे हमने इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करना शुरू किया, ये आज नहीं, ये 600 ईस्वी से शुरू हुआ है। तो इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे। इन शॉर्ट अगर हम याद करें तो हमने जो बताया प्राइमरी इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो होते हैं न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स, टेक्निकल रिपोर्ट्स, डिसर्टेशंस, कॉन्फ्रेंस पेपर्स, पेटेंट्स, स्टैंडर्ड्स, ये सब हमारी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन में आते हैं, जो पहली बार जल्दी से जल्दी छप जाते हैं, जो रोज हर दिन छपती रहती हैं चीजें, जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, जो मैंने देखा, सुना, पढ़ा, किसी से पूछा, उसे मैंने छापा, या मैंने जिस किसी पे काम किया, रिसर्च किया, ये प्राइमरी इन्फॉर्मेशन होती है। सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन में क्या करते हैं हम, इन प्राइमरी इन्फॉर्मेशन में से इन्फॉर्मेशन को कैसे रिट्रीव किया जाए, कैसे हम इन्फॉर्मेशन लेके निकाल लें, वो इन्फॉर्मेशन जो पर्टिकुलरली हमें चाहिए होती, तो उसके लिए हम इस इन्फॉर्मेशन को इंडेक्सिंग कर देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में हमारे पास प्रेजेंट हो जाए और हम जल्दी से जल्दी अपने जो हमारे पास मेन एम है, जो इन्फॉर्मेशन हमें रिट्रीव चाहिए, उस तक हम पहुंचे। सर्वेज बनाते हैं, रेफरेंस बुक्स रखते हैं, टेक्निकल ट्रांसलेशन होती है, जैसे एक लैंग्वेज में अगर कोई भी चीज़ छप गई है, जब अगर हमने आप इसे दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिया, तो ये भी एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाता है। टर्शरी सोर्सेज में क्या कहते हैं हम इन्हें, गाइड्स टू ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, वो जो प्राइमरी और सेकेंडरी तक पहुंचने के लिए हम गाइड्स क्रिएट करते हैं। वो गाइड्स में जैसे नेशनल बिब्लियोग्राफिकल सोर्सेज होते हैं, बहुत सारे INB, BNB, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गाइड बन जाते हैं इस इन्फॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए। वो हमें बेसिकली समझे आप एड्रेस जैसा दे देते हैं इस इन्फॉर्मेशन तक हम कैसे पहुंचे। अब जो हम अभी बात करेंगे वो बात करेंगे डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय फॉर्म, कैसे होते हैं, बाय फॉर्म का मतलब फिजिकल फॉर्म में कैसे होते हैं, रिकॉर्डेड सोर्सेज भी होते हैं, किस तरह से उन्हें ग्रुप किया गया है, किस मटेरियल पे इन्हें रिकॉर्ड किया गया। तो पेपर बेस्ड जो है कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज अदर मीडिया पे है, कुछ पेपर पे है, और कुछ बहुत सारे अदर मीडियाज हैं जिस पर इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। पेपर बेस्ड जो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज हैं वो कभी कभी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड भी होते हैं। पब्लिश में तो आप देखेंगे जो भी पेपर पे पब्लिश हुआ वो पब्लिश्ड मटेरियल हुआ। अनपब्लिश में क्या होता है, जो हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो लिमिटेड हम नंबर में पब्लिश कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं उसे। उस सोर्स को हम लोग कुछ लिमिटेड पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं, जैसे थीसिस हो गए, डिसर्टेशंस हो गए, ये लिमिटेड हम कर लेते हैं। तो कभी कभी ये प्राइस्ड भी होती है या पब्लिक के लिए होती है। तो इस तरह से ये जो इन्फॉर्मेशन है पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड भी चलती है, प्रिंटेड में कैसे होता है, पेपर्स पे कैसे होता है। और जो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन अदर मीडिया है, अदर मीडिया में मतलब जैसे आप कहेंगे साउंड के हिसाब से ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी, विजुअल में हो गया स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, ट्रांसपेरेंसीज, विजुअल टेप्स में मूविंग फिल्म्स, आर्टिफैक्ट्स में रेल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या ऑप्टिकल मीडिया या माइक्रोफॉर्म्स एंड माइक्रोफिश, ये सब जो है हमारे पास अदर सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए है। तो पर्पस क्या है इस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का डिफरेंट सोर्सेज पे? अलग अलग तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग डॉक्यूमेंट्स पे रिकॉर्ड करने से हेल्प हो जाती है हमारी। कभी कभी अगर हम देखेंगे, हम अपनी क्लास में जब पढ़ा रहे होते हैं पेपर से ना कि हम अगर एक वीडियो चला के दिखाएं या एक ऑडियो सुनाएं, तो उसका जो इफेक्ट है अलग होता है। इसका मतलब जो है ये एक टूल की तरह यूज हो जाता है वहां पर। यही इन्फॉर्मेशन हमने जैसे अभी आप इसी लेसन की एक वीडियो भी देखेंगे स्वयं पे या YouTube में जाकर के देखेंगे, तो आपको अलग चीजें भी नजर आएंगी। उसमें आपको कोई एफर्ट नहीं करना, वह एफर्टलेस है। आप चलाएंगे उसे, वो सुनते रहेंगे आप और देख भी लेंगे उसमें कौन सी स्लाइड्स है, क्या दिखाया गया है। अगर मैं यहाँ आपको जबानी पढ़ाना चाहती हूँ कि ये ट्रांसपेरेंसीज होती हैं, स्लाइड्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वहां पर मैं स्लाइड्स में ये चीजें आपको शो कर सकती हूँ, दिखा सकती हूँ, फोटोग्राफ्स लगा सकती हूँ, यहाँ पर मैं खाली आपको बता सकती हूँ। तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं वो किस पे? सीडी रोम्स पे है, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी डीवीडी है, तो इसमें ज़्यादा सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इसमें ऑलमोस्ट हम 3,25,000 पेजेस तक की इन्फॉर्मेशन जो है एक एक सीडी रोम पे कर सकते हैं इन्फॉर्म। तो जो मैक्सिमम स्पेस हमारा लाइब्रेरी में लेती हैं चीज़ें, उनको जब हम इस तरह से हम उन्हें सेव करके रखते हैं, एक तो हमारे पास स्पेस का क्रंच कम हो जाता है, दूसरा हमें इन्फॉर्मेशन हैंडी हो जाती है, तीसरा हमें इन्फॉर्मेशन कंप्रेस्ड में मिल जाती, सर्चेबल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि अब देखा जाए, हम लोग मेटाडेटा क्रिएट करके बुक्स को अपलोड करवाते हैं या जैसे QR कोड्स बनाते हैं, तो QR कोड से हम स्कैन करके वो हमें पूरा उस पेज तक ले जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है चेंजेस हैं इन्फॉर्मेशन को सेव करने के तरीके हैं। या हमारे पास बड़े बड़े बुक्स हैं, मैप्स हैं, चार्ट्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, इन सबको हम कैसे सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर के लिए। जो आज से 500 साल 1000 साल पहले कोई चीज़ जो फोटोग्राफ आई है उसे कैसे प्रिजर्व किया जा सकता, आज तक जब हमें मिलता है वो, उन सबको हम प्रिजर्व करते थे उस समय माइक्रोफॉर्म्स में। इसी इमेज को रिड्यूस किया जाता था, काफ़ी हद तक रिड्यूस करके इन्हें सेव करके रखा जाता और फिर वही इन्फॉर्मेशन हम प्रिजर्व करके रखते। और मगर उन सब के लिए हमें एक चाहिए होता था रीडर, जैसे कि हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, मगर उसके लिए हमें एक मीडिया क्या चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, फ़ोन चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, इंस्ट्रूमेंट जो है वो चाहिए हमें कुछ ना कुछ। उसी तरह से अगर हम माइक्रोफिल्म को देखना चाहते थे किसी भी लाइब्रेरी में जा करके, पुराने से पुराना न्यूज़पेपर देखकर पढ़ना चाहते थे, उसको इनलार्ज हो जाता है उस पर हमें एक माइक्रोफिल्म रीडर की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से साउंड और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के लिए भी हम लोग सीडी रोम्स का, MP3 का इस्तेमाल करते हैं। कई कई जगहों पे हम लोग iPads या MP3 प्लेयर्स, स्मार्टफोन्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरह से हम लोग अब जो म्यूज़िक सुनते हैं डिफरेंट हो गया है। पहले से ऑडियो कैसेट्स होती थी, टेप्स होते थे, अभी ये डिफरेंट हो गया है। अब हम इस इन्फॉर्मेशन को और तरीकों से भी सुन सकते हैं या डायरेक्टली नेट से हम लोग डाउनलोड करके भी सुन लेते हैं। फिर है आर्टिफैक्ट्स और रियलिया। आर्टिफैक्ट्स वो हैं जो हमारे क्राफ्टेड चीज़ें हैं, उसमें हमारी जो ह्यूमन स्किल है वो दिखती है, हमने उसको हिस्टोरिकली और आर्कियोलॉजिकली इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसे, ताकि ये जो है ये सारी चीज़ें हमारे फ्यूचर में कभी कभी जब हम देखना चाहते हैं उनमें टूल है, केव पेंटिंग्स हैं, इस तरह से ये भी रखे जाते थे पहले। रियला का मतलब है वो रियल टाइप ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे रियल लाइब्रेरी साइंस में से एजुकेटिंग टूल ही कहेंगे हम, तो जैसे क्लास में टीचर अगर पढ़ा रहा है तो वो कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपको दिखा के पढ़ा सकता है, उस ऑब्जेक्ट को खाली बुक से या फोटो दिखा के नहीं, पर उसका रियल ऑब्जेक्ट बना के आपको दिखाएंगे, उस तरह से एक माइंड में एक इमेज भी बन जाती है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट इस तरह का होता है, इसका पिक्चर ऐसा है, इसका कलर ऐसा है, तो इट गिव्स यू मोर, इट बिकम्स मोर इफेक्टिव दैट वे। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, जो कि आजकल हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत सारा सभी मटेरियल जो है अवेलेबल है, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक के लिए टेक्निकल मीडिया की ज़रूरत पड़ती है हमें, ताकि हमारे जो एंड यूज़र है उसके पास रिकॉर्डिंग्स या वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग्स या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस जो भी देखना हो, दे शुड हैव सम इक्विपमेंट or download it, to read it, to listen to it. The कंटेंट जो स्टोर किया जाता है स्टोरेज मीडियम में रिकॉर्डिंग्स का जो है, उसके लिए हम एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ कर लेते हैं, या ऑनलाइन नेटवर्क से हम लोग इंटरनेट के थ्रू भी इस कंटेंट को डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे हम देखेंगे अब हमारे पास टेलीविजन चैनल्स पे आप देखोगे, आपके पास अलग अलग तरह के चैनल्स मिलेंगे आपको, गेम्स के लिए अलग होते हैं या न्यूज़ के लिए अलग है, एंटरटेनमेंट के लिए अलग है, इस तरह से सभी जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया है इस पे भी अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, और जब आप चाहेंगे तब आप इसे देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर एक और मीडिया है वो है हमारा मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया, जहां पर की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है मैग्नेटिक सरफेसेस पे, यहां पर आपका डिजिटल या एनालॉग हो दोनों ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, यहाँ पर आपका ऑडियो हो, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो, जिस तरह से पहले आपके पास रील टू रील ऑडियो कैसेट्स टेप्स होते थे, उसी तरह से इस मैग्नेटिक स्टोरेज में अब चेंजेस आ गए हैं, जैसे कि सीडीज, डीवीडीज और ब्लू रे डिस्क हैं। ब्लू रे डिस्क जो हैं वो काफ़ी हैवी डाटा को स्टोर कर सकती हैं, अप टू 50 GB तक का डाटा उन पे स्टोर हो जाता है। तो ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस मीडिया की बात हुई। फिर है ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया में ज़्यादातर जो स्टोरेज मीडिया या कंटेंट जो स्टोर किया जाता है डिजिटल फॉर्म में स्टोर किया जाता है, और ये सब कैसे पढ़ा जाता है, लेज़र, इट कैन बी रेड बाय लेज़र। द मीडिया इंक्लूड्स CD-ROM, DVD, Blu-ray, डिस्क या बहुत तरह के फॉर्मेट्स में होता है। इसमें आपको रीराइटेबल या राइटेबल ओनली रीडेबल सीडीज एंड डीवीडीज भी होती हैं। इसमें जो आपकी कैपेसिटी है, एक सीडी की कैपेसिटी 700 MB की है और डीवीडी की 4.5 GB तक भी है, और जो आपका ब्लू रे डिस्क है वो काफ़ी हैवी डिस्क है, उसमें आपको 25 GB से शुरू होकर के 50 GB तक आप रख सकते हैं। ये ऑप्टिकल मैग्नेटिक के बाद का नेक्स्ट स्टेप है। इस तरह से जो हमने पढ़ा है इसमें हम इंफॉर्मेशन को किस किस चीज़ों में, एक प्रिंट के अलावा किन किन चीज़ों पे इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, आर्टिफैक्ट्स है, रियला है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मैग्नेटिक स्टोरेज है या ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया में आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर की जाती है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जो बताएंगे आपको माइक्रोफिल्म्स में, आपने देखा होगा जो आपकी बुक के हमने एक पिक दिखाई है वहाँ पर माइक्रोफिश का और माइक्रोफिल्म का, तो उसमें क्या दिखाया गया है, ये हम जो हमारे पास जो इतने सारे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, फोटोग्राफ्स हैं, इनको कैसे प्रिजर्व करते हैं हम फ्यूचर के लिए, तभी हमें आज भी मिल जाते हैं ये सब चीजें, इनको फोटो खींच के उस फोटो को रिड्यूस कर करके आप देखेंगे बिल्कुल एक बॉक्सेस बॉक्सेस जैसा बन लगता है हमें, पर वो बॉक्सेस नहीं है, वो बॉक्सेस क्या है, वो एक फिल्म है, बहुत छोटी सी फिल्म है, इसी फिल्म को हम इनलार्ज कर लेते हैं, ये 4x6 inches की एक फिल्म बन जाती है, एक फ्लैट कार्ड के जैसे बन जाता है, इसको हम इनलार्ज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं, ताकि जो हमारे पास ओल्ड फ्रेजाइल डॉक्यूमेंट्स पहले थे उन्हें हम कैसे प्रिजर्व करते, यही तरीका था हमारे पास करने का। तो माइक्रोफिल्म रीडर और माइक्रोफिश रीडर्स भी लाइब्रेरी में होते थे, ताकि हम लोग इस इंफॉर्मेशन को आगे के लिए प्रिजर्व करके रखें। तो अभी तक हमने ये सारे जो कैटेगरीज थी, किस तरह से हम फिजिकल फॉर्म ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है वो हम किन किन किस किस मीडिया पे स्टोर कर सकते हैं, ये सब हमने अभी तक पढ़ा। अब हम बात करेंगे नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है वो भी तो है सोर्सेज, जहां हम किसी चीज को स्टोर नहीं कर रहे हैं, जो कहीं पर दिख नहीं रहा है हमें, वो क्या है, वो सारे सोर्सेज हमारे पास है, ह्यूमंस, ऑर्गेनाइजेशंस, मास मीडिया अदर देन प्रिंट मीडिया और इंटरनेट, इन सब से भी हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, ये है नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो है ह्यूमंस, इंसान जो है, सबसे यूजफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो आपको देखेंगे, आप जब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और तभी आपको देखेंगे कन्वे हो जाती है, कभी कभी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको किसी लेक्चर में पता चलेगी, कोई बता रहे हैं या आप एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं भी होती है, दिस ये जो होता है एक दूसरे से बात करने से भी होता है, जैसे ये ह्यूमंस में हम एक अनपढ़ भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और एक एक्सपर्ट भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। इसमें हम जैसे कि ये कहेंगे, अगर सपोज किसी साइट पे एक्सीडेंट होता है या कुछ ऐसी घटना घटती है, वहां पर जो लोग मौजूद होते हैं उस टाइम उन लोग जो देखते हैं वो आपको बता देते हैं, हाँ हमने देखा था, तो एक तरह से वो एक विटनेस हो जाते हैं उस एक्सीडेंट का, तो ये तो कहीं रिकॉर्डेड है नहीं, पर वो खुद बताने, उनकी बताने, ह्यूमन का खुद का इंटरवेंशन, उनकी खुद के बताने से हम पे ये पता चल जाता कि हाँ ये हुआ था और हम इस बात को मानते भी हैं। तो इस तरह से एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी एक विटनेस की तरह जब यूज हो जाता है तो वो भी एक तरह की इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा होता है, वो भी कैरी कर रहा होता है उस इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह। और जो एक्सपर्ट ओपिनियन होता है वो हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं रिसर्चर्स के लिए, जब कोई रिसर्च कर रहा होता उसमें कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए इन बिटवीन, कहीं आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, तो वो उस तरह से भी एक्सपर्ट कर देते हैं, उस समय आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो एक ह्यूमन बीइंग बहुत बड़ा एक मददगार साबित हो जाते हैं इन्फॉर्मेशन को देने में, एक दूसरे तक पहुंचाने में, एक सोर्स की तरह। फिर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, गवर्नमेंट हो गई या प्राइवेट हो गई, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं या रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूजियम्स हैं, आर्काइव्स हैं, बहुत सारे पब्लिशिंग हाउसेज हैं, ये सब जो है इनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, रिलायबल होती है और टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक एक्टिविटी की मिल जाती है, जो कहीं और नहीं मिलती है। आप देखेंगे अगर आप किसी म्यूजियम में जाएंगे, वो इन्फॉर्मेशन जो सदियों पुरानी इन्फॉर्मेशन उन्होंने वहाँ रखी होती वो यूजुअली आप किताबों में कभी भी ज़रूरी नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए आपको, और वहाँ पर उस म्यूजियम में रखने का मतलब है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है ऑथेंटिक है, आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं किसी, कहाँ कहीं पर आप रिसर्च कर रहे हैं, कोई पेपर पब्लिश कर रहे हैं, तो ये सब जो है ऑर्गेनाइजेशंस का रोल हो गया इन्फॉर्मेशन को कैसे वो स्प्रेड कर सकते हैं, कैसे वो एक सोर्स बन जाते हैं इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल करने का। फिर है मास मीडिया। मास मीडिया भी एक मीडियम है जहाँ से हमें न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती है। ये कहाँ तक जनरली जाती है, ये जनरल लोगों तक पहुँचाने के लिए है जिसे हम मास मीडिया कहते हैं, क्योंकि कॉमन जो इन्फॉर्मेशन है वो मासेस तक पहुँचने का मतलब ही मास मीडिया है। मास मीडिया में क्या क्या इंक्लूड होता है, प्रेस है, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, ये सब मास मीडिया में आते हैं। रेडियो टेलीविज़न भी है, आप देखेंगे रेडियो टेलीविज़न में भी को भी बहुत ही इफ़ेक्टिव पाया गया है। अगर हम अभी बात कर रहे हैं ये तो हम रेडियो के थ्रू बात करेंगे, और ये आपको यूट्यूब पे भी मिलता है, पर रेडियो में आप जब सुनेंगे तो आपके पास बहुत इस तरह के इन्फॉर्मेशन आती। कम्युनिटी रेडियोज़ हैं या जो कॉमन रेडियोज़ चलते हैं उन पे रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स को लेके, इश्यूज़ को लेकर के भी डिस्कशंस होते हैं, और बातें जो कन्वे करना चाहते हैं हम किसी न किसी तरीके से कन्वे हो जाती है मास मीडिया तक। तो वो मास मीडिया अपना रोल काफ़ी इफ़ेक्टिवली प्ले करता है। मेन एडवांटेज हमारे पास टेलीविज़न से क्या हो जाता है, आप जो रेडियो में हैं हम खाली सुन सकते हैं, और टेलीविज़न में हम आपको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो यूज़र्स घर पे बैठ के आराम से दोनों चीज़ों का आनंद भी उठाते हैं और अवेयरनेस भी आ जाती है। अब जो आपके रेडियो जो है लोकल है, रीजनल है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, तो जब लोकल रेडियो आप सुनते हैं तो जो लोकली जो चीज़ें हुई होती हैं वो आपको पता चल जाती है। इंटरनेशनल सुनते हैं तो जो वर्ल्ड वाइड हो रहा है, दुनिया में किसी भी कोने में हो रहा है, वो आपको पता चल जाता है। तो उस तरह से आपका एंटरटेनमेंट भी कह सकते हैं, अवेयरनेस भी कह सकते हैं, और म्यूज़िक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हो गए, इस तरह की जो सारी एक्टिविटीज़ मास मीडिया में रेडियो जो प्ले करता है वो भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें हमें बहुत कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर इन्फॉर्मेशन आपको रिलायबल मिल जाती है, और जो आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो आप कर पाते हैं। इसी तरह से जैसे टेलीविज़न पे भी आप देखते हैं बहुत सारे चैनल्स हो गए हैं, और सारे चले कभी कभी चैनल्स जो हैं डेडिकेटेड चैनल्स भी हैं, जो मूवीज, स्पोर्ट्स, गेम्स, रिलीजियस डिस्कोर्स भी या टूरिज्म के बारे में बताते हैं। देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप नेशनल ज्योग्राफिक देखेंगे तो आपको इतना सारा कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, नेचुरल चीज़ों के बारे में, या बहुत सारी रिसर्च जो हर एनिमल पे होती है, हर उस पर होती है, तो वो आपको मिल जाती है। इस तरह से हम जो मास मीडिया में रेडियो का भी बहुत बड़ा हाथ है और टेलीविज़न का भी बहुत बड़ा हाथ है, और जो इसका इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट है सभी लोगों पे वो काफ़ी नोन इफेक्ट है। तो अभी तक जो बात हमने कही आपको, इसका हमने एक टेबल बनाया है। शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बता दें कि इन्फॉर्मेशन सोर्सेज में हमने क्या क्या पढ़ा आपको, और आपको क्या क्या पता होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन सोर्सेज को दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। लाइक ये वर्ड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब जो चीज़ लिखी गई हो, डॉक्यूमेंटेड हो। तो डॉक्यूमेंट में दिखा बताया गया डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में बाय कंटेंट एंड बाय फिजिकल फॉर्म। कंटेंट आपका क्या है, या आप कंटेंट के बेस पे भी इसे अलग कर सकते हैं, और एक फिजिकली कैसा डॉक्यूमेंट है, किस पे आपने इन्फॉर्मेशन को रखा हुआ है, वो भी अलग हो सकता है। फिर अगर देखेंगे बाय कंटेंट, कंटेंट मतलब किस में क्या लिखा गया है, वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इन्फॉर्मेशन में डिवाइड किया गया है। और जो फिजिकल फॉर्म को देखा गया है वो है पेपर बेस्ड सोर्सेज और सोर्सेज ऑन अदर मीडिया, जो कि जिसमें हम मैंने आपको बताया सीडीज, डीवीडीज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास मीडिया, ये सब भी जो है ये उसका एक हिस्सा है। और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में हमने अभी अभी बात की, सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें ह्यूमंस हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिर है मास मीडिया, और फिर उसके बाद इंटरनेट भी आया है। तो सबसे पहले हम शायद इन्फॉर्मेशन के लिए ह्यूमंस पे डिपेंडेंट रहते थे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट ज़्यादा होते थे, उसके बाद हमने बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को इस्टेब्लिश होते हुए देखा है, की गई है, जो एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। वहां पर हम आ गए हैं, फिर मास मीडिया हम हमसे सारी इन्फॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं। तो इसके बाद इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया जहां पर कि हम लोग एक शेयर भी कर सकते हैं, इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स बनता जा रहा है। ये था हमारा एक शॉर्ट सा इसका इन्फॉर्मेशन सोर्सेज का पूरा पिक कैसा है। तो अब हम जो बात करेंगे आपको, अब हम थोड़ा सा हम आपको बताएंगे हिस्ट्री, कहाँ से जो इन्फॉर्मेशन सोर्सेज जो है, कैसे शुरुआत से हम लोगों ने कितनी चेंजेस आए हैं शुरुआत से, आज अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो उसकी शुरुआत भी ज़रूर कहीं ना कहीं से हुई होगी। तो वही शुरुआत करने के बाद ही थोड़े 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 चेंजेस आने की बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। जैसे कि कहा गया है कि पहले जो अर्ली बुक्स थी, पहले तो भोजपत्र और वो सब थे। 105 एडी में चाइना ने एक मीडिया और मेथड्स को रिकॉर्ड करने के तरीकों को डिफरेंट बनाने के लिए पेपर इन्वेंट हुआ है। वो जो पेपर हुआ उससे पहले लोग केव्स पे, वॉल्स पे क्ले टेबलेट्स है, मेटल्स है, लेड कॉपर ब्रॉन्ज के बने हुए, आपने देखे होंगे वो तख्ती टाइप बने हुए होते थे जिसपे कि इन्फॉर्मेशन को लिखा जाता था, रखा जाता था, फिर वो सेफ की जाती थी, बाकी सब लोगों के लिए कॉमनली अवेलेबल नहीं होती थी। तो इन्हीं इस तरह से पाम लीव्स पे लोगों ने इंडिया में बहुत सारी, आप देखेंगे जो हमारी हिंदू रिलीजियस राइटिंग्स हैं, वेदास वगैरह पाम लीव्स पे लिखे गए हैं। तो उस समय इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और कुछ नहीं था हमारे पास, तो इन चीज़ों से शुरुआती हो गया है कि पाम लीव्स से शुरू होकर के हम 105 एडी में चाइना ने पेपर को इन्वेंट किया। तो ये पेपर यहाँ पर इन्वेंट होने के बाद दुनिया के सभी पार्ट्स में फैलता गया, हर जगह गया है, जहाँ से कि भी लिखना आसान हो गया है। और 1400 एडी में देखा जाए तो डेकोरेटेड ब्यूटीफुल कलरफुल डिज़ाइन की बुक्स बनाए गए, पेपर्स बनाए गए, और इनकी जो कॉस्ट थी वो ज़्यादा काफ़ी हैवी कॉस्ट हो जाती थी क्योंकि इस पर मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो इस वजह से ये लोग, ये चीज़ें कॉमन लोगों तक नहीं पहुंच सकती थी, ये राजा महाराजा के दरबारों में ही तक सीमित रहती थी, ताकि जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है वो उन्हीं के काम की है और वहीं पर ही है, क्योंकि मल्टीपल कॉपीज नहीं थी और इसको सेव करना भी मुश्किल था। अगर टूट गया, क्रैक हो गया, क्ले पत्ता है, ये सब खराब भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग शुरुआत से 105 में जब चाइना ने पेपर को इन्वेंट किया, वहाँ से शुरुआत हो गई लिखने की। फिर उसके बाद हम लोग आगे प्रिंटेड बुक्स पे और अदर सोर्सेज पे कैसे प्रिंट शुरू हो गया। जो प्रिंटेड किताब जो पहले चाइना ने निकाली थी उसका नाम था डायमंड सूत्रा इन 868 में ये इन्वेंट हो गई। ये बुक कैसे लिखी गई थी, ब्लॉक प्रिंटिंग से गई थी, जैसे ब्लॉक्स बनते हैं उससे प्रिंट किया गया था उस किताब को, और मूवेबल टाइप ऑफ प्रिंटिंग प्रेस होते थे जिसमें ये इन्हें छापा गया। तो सबसे 1450 एडी में जोन्सबर्ग गुटनबर्ग एंड हिज एसोसिएट्स, उन्होंने यूरोप में पहले प्रेस का इन्वेंशन किया, जिस तरह से जहाँ से फिर किताबें छपनी शुरू हो गई। और जब किताबें छपेंगी तो कॉमन लोगों तक, मासेस तक पहुँचेंगी, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो मास तक पहुँचने से उस तरह से फिर लाइब्रेरीज का इन्वेंशन हो गया, क्योंकि अब हमारे पास जब प्रिंटेड बुक्स आएंगी और छप भी ज़्यादा रही हैं, जितनी आज हैं उतनी नहीं, पर एक लाइब्रेरी का शेप शुरू हो गया था। उसमें क्या हो गया कि कॉमन लोगों के लिए एक स्पेस बन गया जिसे हम लाइब्रेरी कहेंगे, वहाँ पर ये सब डॉक्यूमेंट्स को रखा गया, मैन्युस्क्रिप्ट्स को रखा गया, और इनको ओपन शेल्स में रखने से ये हुआ कि कॉमन लोग आएंगे पब्लिक लाइब्रेरीज में आकर के वो लोग इन्हें देख सकते हैं। तो इस तरह से लाइब्रेरीज का जो शुरुआत हुआ है वो 1600 से हुआ है, और आज की लाइब्रेरीज और तब की लाइब्रेरीज में बहुत सारा फर्क है, अंदर आ गया है, वे ऑफ वर्किंग में, आपकी सर्विसेज में फर्क आ गया, मगर किताबें वहां से शुरू हो गई थी बनना। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया पीरियोडिकल्स। ये तो किताबों की बात हुई कि किताब साल में एक हम लिख रहे थे या दो साल में चार साल में एक किताब लिख रहे थे। तो 17th सेंचुरी में स्कॉलर्स और साइंटिस्ट्स के अंदर ये लगा कि रिसर्च में हम लोग कहीं भी बहुत जल्दी से जल्दी हमें करंट इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता चलता। एक मीडिया होता था, या वो फिजिकली मिलते थे या चिट्ठी वगैरह लिखते थे, या कोई कॉन्फ्रेंस अगर ऑर्गेनाइज हुई तो वहां जाकर वो फिजिकली दिखा पाते थे हम किस चीज पे काम कर रहे हैं, हम कैसे क्या बना क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से मगर इस चीजों में सालों साल लगते थे। तो वहां से इन्वेंशन हुआ पीरियोडिकल। पीरियोडिकल का मतलब हुआ जिसकी एक पीरियोडिसिटी हुई, चाहे वो फोर्टनाइटली कह सकते हैं आप, मंथली कह सकते हैं, बाय मंथली या सिक्स मंथली, जो भी कहेंगे आप, एक पीरियोडिसिटी के हिसाब से जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई हमने उसे उस सब्जेक्ट के हिसाब से छापना शुरू कर दिया। तो पीरियोडिकल्स का जन्म वहां से हुआ। ये हम लोग फिर इन्हीं पीरियोडिकल्स को कॉन्फ्रेंसेस में जा करके खाने से और ये यूज हो गई इस इन्फॉर्मेशन की, किस जगह पे कितना काम हुआ है, किसने क्या काम हुआ, ये डॉक्यूमेंटेड रहने लग गया। इसके बाद हम लोग आगे इमर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज पे। 1800 में जो काफ़ी सारी इन्वेंशंस हुई हैं वो हुई हैं टाइपराइटर की, टेलीग्राफ की, टेलीफोन की, जिनकी वजह से इन्फॉर्मेशन का डिसेमिनेशन ईजी होने लग गया है। टेलीफोन से भी हम लोग जैसे तार वार भेजते थे, इन्फॉर्मेशन इधर से उधर करना आसान हो गया था। टाइपराइटिंग में से ये हेल्प होगी कि टाइपिंग शुरू हो गया और बुक्स का बनना ईजियर हो गया और फास्टर हो गया, और पीरियोडिकल्स का बनना भी फास्टर हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ तक कि हम लोग काफ़ी हद तक 1936 से शुरू हो गया था कंप्यूटर का छोटा छोटा सा कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम लोग शुरू कर सकते थे। फिर मास मीडिया की बात हुई, इसके बाद हमने मास मीडिया में बहुत सारी जो कम्युनिकेशन होती रही, टेलीविजन, रेडियो और मोशन पिक्चर्स और ये सब जिनकी हमने अभी तक बात की, तो ये सब इन्फॉर्मेशन जब उनके थ्रू सब तक पहुँचने लगी तो एडवांसमेंट ऑफ प्रिंटिंग और ये सब मिला के हम लोग काफी आगे चले गए मास मीडिया में। तो इन्फॉर्मेशन कॉमन लोगों तक पहुंचने लगी। 1814 वगैरह में हमने न्यूज़पेपर शुरू कर दिया, जिसमें कि पहले कॉमन कॉमन जो खबरें छोटी छोटी होती थी आसपास के एरियाज में वो छपने शुरू हो गए, तो एक न्यूज़पेपर ने भी शेप ले लिया। फिर उसके बाद हम लोग आ गए इंटरनेट पे, जो आज का जमाना है, मगर ये आज से शुरू नहीं हुआ है, आज से भी 50-60-80 साल पहले शुरू हुआ था इसका काम करना, जो कि अमेरिका में शुरू हुआ था। अप्रानेट के नाम से एक एजेंसी थी, रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू हो गया था, उन्होंने इसे शुरू करा और 1970s में कंप्यूटर पावर स्पीड मेमोरी थोड़ी थोड़ी उसकी इंक्रीज हो गई। और पहले जैसे कि हम लोग, अब तो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर अपने आप ही कर लेता है, फीडेड रहता है, सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, पर पहले हम लोगों को ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा था कंप्यूटर्स के साथ, अब ये थोड़ा कम हो गया। इस तरह से हमने ये पूरी जर्नी कर ली है, वहां से जहां से हम भोजपत्र से शुरू होकर के इंटरनेट तक आ गए, और आजकल जो टाइपिंग है आप देखेंगे ज्यादातर हमारे डिजिटल चीजों का ही, बॉर्न डिजिटल हैं चीजें। मोस्ट ऑफ द जो बुक्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वो टाइपिंग जो होती है डिजिटाइज्ड फॉर्म में ही होती है, और वही वहीं पर सेव हो जाती है और वही आगे जाकर के हमें यूज होता है उन सबका। ये जो था ये हमारा इन्फॉर्मेशन ओवरव्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन सोर्सेज के बारे में था, किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन को हम कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे आगे तक लेके जा सकते हैं, कैसे इसे हम प्रिजर्व कर लेते हैं और आगे कम्युनिटीज के लिए यूजफुल रह जाती है। तो जो हमने आज के लेसन में पढ़ा है, जो भी हमारी जो इन शॉर्ट में लर्निंग क्या हो गई है, हमने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के बारे में पढ़ा, हमने रिकॉर्डेड सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के बारे में पढ़ा, नॉन रिकॉर्डेड सोर्सेज के बारे में पढ़ा, हमने ये बात जानी कि इन्फॉर्मेशन जो है बेस्ड कंटेंट और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कैसे सेव की जाती है, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में क्या क्या सोर्सेज हैं, कैसे डिवाइड होता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सोर्सेज में है, या कंटेंट पे फॉर्मेट पे कैसे इन्फॉर्मेशन को डिवाइड किया जाता है, और प्राइमरी सोर्सेज में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जानने की जरूरत होती है और सेकेंडरी में क्या है, यही चीजें जो है लाइब्रेरी में जाके कभी कभी हमें समझ नहीं आती हैं कि प्राइमरी सोर्सेज कौन से सोर्सेज हैं और सेकेंडरी सोर्सेज क्या है। ये पढ़ने में आसान लगता है, अगर हम इन्हें समझेंगे तो जो लाइब्रेरी में से इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करना होता है हमें, वो काफ़ी यूजफुल हो जाती है हमारे लिए। अब तो कंप्यूटर्स हैं, हम जाके सर्च कर लेते हैं एकदम से। पहले हम लोगों को जो सेकेंडरी और टर्शरी सोर्सेज, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज तक पहुंचने के लिए टर्शरी सोर्सेज की बहुत ज़रूरत पड़ती थी, वो हमारे लिए की का रोल करते थे। अगर हमने वो गाइड्स को देखा, पता करा कि क्या क्या छपा है इस साल में, इस टॉपिक पे क्या क्या छपा है, और वो एब्स्ट्रैक्ट्स हमने पढ़ लिए, तो हम वहां तक पहुंचने में हमें बहुत आसानी हो जाती थी। अब हम लोग डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन को, पर फिर भी अभी भी जो इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करके लेना और उसका यूज करना, यूटिलाइज करना अपने फ्यूचर की चीज़ों के लिए या अपने रिसर्च के लिए, वो अभी भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हर तरह की, हर सोर्स से आ जाती है। उसमें कौन सी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको जानना समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।